Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो तत्तत् कामना से तत्तत् जो हम देवी देवता की सकाम उपासना करते उसकी अपेक्षा आत्मा का यजन करना श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से यदि आपको छाया चाहिए, फल चाहिए, हवा चाहिए, तो केवल जड़ में पानी डालते हैं। जड़ में पानी डालने से आपको छाया ही मिल जाएगी, पत्ते ही मिल जाते, फल मिलते, पुष्प मिलते, शीतल हवा ही मिलती। अब कोई कहे कि नहीं जी, मुझे तो केवल फल चाहिए और फल ऊपर लगता है, मैं तो ऊपर ही डालूंगा पानी। तो ऊपर डाले से नहीं काम चलेगा, जड़ में डालेंगे तो सबका जो मूल है ना, परमात्मा आत्मा, उस आत्मा के यजन करने से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। कहते एक बार जो है ना, बड़ा झगड़ा हुआ पेट में और हाथ में, दोनों में झगड़ा हुआ। हाथ ने कहा कि मैं तुम्हें भोजन कराता हूं, ये मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जो है इकट्ठा कर ले तो मुझे को देते ही नहीं। आंख ने भी यही कहा कि मैं देख देख कर बढ़िया क्या है, 56 प्रकार व्यंजन में तुम्हें जो है देती हूं। जीव ने कहा, आंख ने कहा, कान ने कहा, मैं सुन के समझ करके और अच्छी तरह से तुम्हें भोजन उपलब्ध कराती। सभी ने हड़ताल कर दिया। पेट ने कहा अच्छी बात भाई। पेट ने पहले समझाया कि जो आप लोग हमें भोजन देते ना, इससे मैं थोड़ा थोड़ा सबको देता हूं, पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो सबने हड़ताल कर दिया, तो पेट आराम से शांत से बैठ गया। अब जो हाथ भी काम करना बंद, आंख भी के सामने अंधेरा छाने लगा, तो सबने कहा भाई पेट में कुछ डालो। तो जो पेट में डालेंगे ना, तो भले दिखाई न दे, हाथ को भी ऊर्जा मिलती है, आंख को भी, कान को भी, जीभ को भी। यदि पेट में नहीं डालेंगे तो जीभ बोल नहीं सकती। ऐसे सबका मूल आत्मा है। यदि हम आत्मा का यजन करते हैं, चिंतन करते, उपासना करते हैं, तो उससे सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। तो यदि आत्मा का किया यजन, तब तो सब कुछ उपलब्ध, और अनात्मा का करेंगे तो एक चीज मिलेगी, दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे मानो आपने धन कमाया, तो धन तो मिल गया, मान बढ़ाए प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। यदि यश मिल गया तो फिर जो है कीर्ति नहीं मिलेगी। एक ही चीज मिलेगा, एक की तरफ जाएंगे, दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा पैर यदि पूरब चले तो पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा नहीं जा सकता। उत्तर चले तो दक्षिण नहीं चल पाएंगे, एक ही तरफ। पर यदि हम आत्मा की तरफ बढ़ते हैं तो आत्मा चारों दिशा में व्यापक है। उपनिषद में आया ना कि सैव पश्चात, सैव दक्षिण, सैव उत्तर, सैव अधस्तात् ऊर्ध्वश्च। आत्मा सर्वत्र मौजूद है। तो आत्मा की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो सब कुछ अपने आप उपलब्ध हो जाता है। इसलिए आत्मयाजी की प्रशंसा किया। इसलिए आगे साहब लोग अनात्मा की तरफ नहीं जाना, अनात्मा का यजन नहीं करना। स्थिर रंगई, प्रार्थना किया कि हमारे अंग मजबूत हो, स्थिर मतलब सुदृढ़ मजबूत हो। ये मजबूत का अर्थ पहलवान की तरह ताकत नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। एक श्रुति वाक्य आता है कि नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो भिक्षायाम नैव नैव च, है ना। ये जो आत्मा है निर्बल लोगों से उपलब्ध नहीं होती है। तो वहां पर बलहीने का अर्थ जो है ना, शारीरिक बल नहीं लिया है, बल्कि आध्यात्मिक बल, त्याग, तपस्या, षट संपत्ति का जो बल है साधन चतुष्टय का, उस बल से हीन है तो आत्मा को उपलब्धि नहीं होती है। एक बार जो है ना ऋषिकेश में दो ब्रह्मचारी लड़ गए, लड़ते लड़ते मेरे पास आ गए। एक दक्षिण के थे खूब तगड़े, एक घंटा पढ़ते थे, दूसरे थे उत्तर के कमजोर। वो लाए वही उपनिषद, देखो लिखा है कि नायम आत्मा बलहीन लभ्य। देखो मैं जो है तगड़ा हूं, मुझसे आत्मा उपलब्ध होगी, तुम लोग जो इतने घंटे पढ़ते हो जवानी में आंख में चश्मे लग गए, तुमको क्या आत्मा मिलेगी? कहते ताकत होगा तब ना। अब उन्होंने अच्छा हिंदी भी गलत लिखा, इसकी हिंदी थे ना, हिंदी में ऐसा था कि आत्मा के लिए खूब बल चाहिए, तो बल का उन्होंने अर्थ किया शारीरिक बल। हमने कहा भाई शारीरिक बल नहीं, यदि ऐसा हो तो पहलवानों को आत्मज्ञान जल्दी होना चाहिए ना, उनको बल की विलंब से होता है, होता ही नहीं, होता भी तो विलंब से, बुद्धि वो मोटी होती ना, जाड़ी मोटी होती, बुद्धि होती। तो बल का मतलब कि आध्यात्मिक बल, आप लोगों के पास आध्यात्मिक बल बहुत है, विचार का, सत्संग का, स्वाध्याय का, ऐसे सुदृढ़ अंगों के द्वारा स्तुतवान मतलब कि हम स्तुति करते रहें, तनु भी, तनु मतलब शरीर के द्वारा, यद आयु देवितम व्यसेम, ऐसा अनुय करना, जो हमारी आयु शेष है उस आयु के द्वारा देवता मतलब परमात्मा के हित में व्यसे मतलब बिताए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, अब ये कह रहे कि जो इंद्र है परमात्मा वह हमारा स्वस्ति मतलब कल्याण, स्व मल आत्मा, अस्ति मतलब कि आत्मा में हम वर्तमान हो जाएं, ये रूप चलता अस्ति स्तः संति। तो स्वस्ति का अर्थ है कि हम अपने स्वरूप में स्व में आत्मा में मौजूद हो जाएं। अभी हमारी वृत्ति मौजूद है अनात्मा में, संसार में, शरीर आदि इंद्रियों में, और जहां पर हमारी मनोवृत्ति मौजूद होती है, वर्तमान होती है, उसी का अनुभव होता है, ये सामान्य नियम है। भले हम यहां सत्संग बैठे हैं, वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो महात्मा जी कथा करते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, और एक बुढ़िया माँ रोती जाए रोती जाए, उनको लगा कि बुढ़िया माँ सच्ची सोता है, कितनी भाव से सुन रही है कि उसकी आंख से आंसू आ रहे बार बार। महात्मा जी ने एक दिन कहा, अम्मा तुमको हमारी कथा बहुत अच्छी लगती है। माँ ने कहा कि मुझे पता नहीं तू क्या बोलता है, पर जब तू दाढ़ी हिलाता है तो हमारा बकरा भी मर गया है, उस बकरे की याद आती है, वो भी ऐसा ही उसकी दाढ़ी थी, इसीलिए उसकी याद करके मैं रोती हूं। अब देखो बैठी है माँ सत्संग में, पर मनोवृत्ति कहां चली गई? बकरे में। अब बकरा आए भी नहीं, मर चुका है। चलो बकरा होता तो कुछ बात भी, बकरा मर चुका है, पर मरे बकरे में मनोवृत्ति चली गई, उसकी याद आ रही, उसका याद करके रो रही और दुख से रो रही। पर श्रोता लोग क्या समझते कि बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना जिससे कि प्रेमाश्रु आ रहे हैं, तो वास्तव में हमारी मनोवृत्ति जहां होती ना वही का अनुभव होता। इसलिए प्रार्थना किया कि जो हमारी मनोवृत्ति स्व में अस्ति मतलब वर्तमान हो जाए। ऐसे पूषा से प्रार्थना किया विश्व देव से, तारक्ष मतलब कि गरुड़ जी, गरुड़ जी विघ्नों को दूर करने बड़े माहिर हैं। तो जो अरिष्ट नेमी गरुड़ महाराज हैं, अरिष्ट नेमी विशेषण है गरुड़ जी का, तारक्ष मतलब कि गरुड़ जी, तो वो अभी हमारा स्वस्ति करे मतलब कि कल्याण करे। स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु, अंत में बृहस्पति से प्रार्थना किया कि बुद्धि के अभिमानी देवता जो बृहस्पति, एक हमारे पास धरोहर बुद्धि है, जिस बुद्धि के द्वारा नरसे नारायण हो सकते। 84 लाख योनियों में यह विशेषता केवल मनुष्य के पास है और यह यंत्र मनुष्य के पास ही पूरा है। इस बुद्धि का विकास करते करते, शिक्षण करते करते आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और उपयोग न करे तो आदमी मनुष्य से शैतान हो जाता है। इसलिए अंत में बृहस्पति से प्रार्थना किया कि आप हमें सद्बुद्धि दे। ये तो शांति पाठ। अब जो है आगे देखे उच्चारण कर लें। पहले आश्वलायनो भगवन्तम् परमेष्ठिनम् उपसमित्य उवाच। आश्वलायन नाम है ऋषि का। इसके पूर्व में अथ शब्द का प्रयोग किया है। क्या चीज? हाँ, 53 में है, 53 पृष्ठ में देख लीजिए। अथ शब्द यहां पर मंगल अर्थ में है। अथ शब्द का अर्थ होता है मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्यन, प्रतिज्ञा, समुच्चय, अधिकार, इतने अर्थ में है। जो आपको बढ़िया लगे चुन लेना। मैंने इतना अर्थ बता दिया। अर्थ शब्द का कितना अर्थ है? सबसे पहले मंगल, मंगलवाचक, अनंतर, प्रारंभ, प्रतिज्ञा, समुच्चय, अधिकार और अनंतर, ये इन 7 अर्थ में प्रयोग होता है। यहां पर मंगल अर्थ में लेना। लघु सिद्धांत कौमुदी के अव्यय प्रकरण में लिखा है, अव्यय प्रकरण में। तो ये मंगलवाचक है। आश्वलायन जो ऋषि हैं वे भगवंतम परमेष्ठिनम, भगवंत ये संबोधन है। पुराने जमाने में जैसे आप लोग आजकल कहते हैं ना, किसी को भाई जी कहते, किसी को स्वामी जी कहते, किसी को महात्मा जी, ऐसे वैदिक संबोधन है भगवान शब्द। हे भगवान, हे भगवंत, परमेष्ठिनम मतलब ब्रह्मा जी के पास उपसमित्य उपगमन किए गए, और जाकर उवाच मतलब कि बोले। क्या बोले? कि अधि ही भगवन ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्विषे विमानाम निगूढ़ाम यया अचिरात सर्वं पापं व्यपूय परात्परं पुरुषं याति विद्वान। जा करके जिज्ञासा किया, क्योंकि नियम है कि जब श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाए तो अनात्म चर्चा न करे, आत्म चर्चा करनी चाहिए। अनात्म चर्चा तो करने के लिए दुनिया बहुत सारा जगह है। तो यहां सुलायन ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर उन्होंने जिज्ञासा प्रकट किया। अधिहि भगवन ब्रह्म विद्याम वरिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ विद्याओं में जो विद्याओं का राजा, जो ब्रह्म विद्या है, विद्या कहते उसे ही है, या विद्या सा विमुक्त। विद्या वही है जिससे अशेष विशेष दुखों से छुटकारा हो, परमानंद की प्राप्ति। अशेष विशेष दुखों से छुटकारा, सभी प्रकार के समस्या का समाधान की अचूक दवा है ब्रह्म विद्या। यह अचूक दवा है। जैसे ही समस्या का समाधान, और समस्या का जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या का मतलब अज्ञान। हाँ, ठीक आपने कहा, ना समझ। ना समझ ही अविद्या, अविद्या होगा ना समझ। मतलब हम लोग इतना नजदीक, आत्मा सर्वाधिक नजदीक है, उस आत्मा को समझ नहीं पाते। इसी नासमझी का नाम है अविद्या, और इसी नासमझी से सारी समस्या खड़ी हो रही। कोई भी समस्या वास्तव में शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद रूप हम लोग हैं, पर इस सच्चिदानंद आत्म स्वरूप को न जानने से न समझने से हमने अपने को शरीर मान लिया, देह मान लिया। अच्छा, शरीर देह को कितने दिन से मान रहे? 50 वर्ष, 25 वर्ष, 60-70 वर्ष, इसके पहले तो था नहीं ये, और 20-25-50 के बाद ये नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने शरीर को आत्मा मानकर और शरीर के पीछे सुखी दुखी हो रहे। अब यहां पर मानो 50 आदमी बैठे हैं, किसी आदमी ने किसी का नाम लेके 25 गाली दी और सब तो खुश होंगे, अच्छा हुआ, अच्छा प्रसाद मिला। परंतु 49 आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आदमी आग बबूला हो जाएगा, बोले अच्छा अभी बाहर चलो दिखाऊंगा। उसको ऐसा क्यों बुरा लगा? गाली सबने सुनी, श्रवणेन्द्रिय सबके पास है, सबने उस शब्द को सुना, अर्थ भी लगा, पर किसी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि खुश हुए, बढ़िया हुआ, अपने को ज्यादा बनता, अच्छा प्रसाद मिला। पर जिसका नाम उसको बहुत बुरा आग बबूला, कोई बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने यह अभ्यास कर लिया कि ये नाम मेरा, उसने अभ्यास क्या कर लिया कि यह नाम मेरा और यह मैं हूं। यदि अपने को ऐसा ना माने कि यह मेरा नाम, तो कोई बुरा नहीं लगेगा। तो उस गाली का जो दर्द तकलीफ क्यों हुआ, पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि हमने उस नाम से अपने को जोड़ लिया, यही मैं हूं। अच्छा, साथ क्या कह रहा है कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, नाम रूप से रहित हो। जब नाम रूप है ही नहीं आपका, आप अरूप है, अनाम है, सच्चित आनंद स्वरूप है, तो चाहे कितना भी गाली दे क्या फर्क पड़ना? फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे कितना भी कुछ बोले। तो ये जो ना समझी है, ना समझी से हमने अपने को जो शरीर मान लिया, वो शरीर में केवल मिट्टी मिट्टी है, और मिट्टी बढ़िया मिट्टी नहीं है, ऐसी मिट्टी किसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। इसमें कर लिया अध्यास, अध्यास मतलब अतस्मिन तद बुद्धि, आत्मा के अभाव वाले में आत्मा बुद्धि होने का नाम अध्यास है। जो जैसा नहीं है उसमें वैसा बुद्धि करने का अध्यास करते। तो अतस्मिन मतलब कि आत्मा के अभाव वाले शरीर में आत्मत बुद्धि का आरोप हो गया, इसी को अध्यास कहते, और इसी ना समझी से सारी समस्या खड़ी हो गई। कहते हैं एक घर में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद अब जो है ना पति भागा, बोला कि तू हर दिन तकरार करती, दिन भर मैं तेरे लिए खेती करता हूँ, कमाता हूँ, खिलाता हूँ, और घर में आते कुछ न कुछ शुरू फजीहत। अब वो आदमी भगा, भगते भगते जंगल में गया। जंगल के रास्ते में एक महात्मा जी की कुटिया थी। महात्मा जी को बोला, महाराज बताना नहीं, मैं कुटिया के पीछे छिप जाता हूं। छिप गया, इधर से पत्नी भी खोजते खोजते आई पीछे पीछे भगे भगे। जब पत्नी आई, पत्नी ने महात्मा जी से पूछा, महाराज हमारा पति अभी जो है ना तकरार करके झगड़ा करके भगे भगे आया, आपने देखा कहाँ है? महात्मा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा कि मेरा नाम तो है फजीती। बोले अच्छा, उसका नाम क्या? बोले उसका नाम तो है बेवकूफ। बोले तब तो यही होगा, क्योंकि जहां बेवकूफ जाएगा फजीती अपने आप जाएगी पीछे पीछे। इतने में सुन रहा था, सामने आ गया, बोला कि तू यहां भी पहुंच गई। बिल्कुल हम लोग भी वैसे ही, हमारा मन जो है ना नासमझ होने से बेवकूफ है। देखिए बेवकूफ शब्द का जानते हैं, वे बोलते हैं मार्ग को, संस्कृत में वे धातु, वे या धातु है, गति अर्थ वे या गतौ धातु है, तो वीणा गतु गतु से बेवकूफ बनता है। तो रास्ता है ना, रास्ता को हम लोग जो है ना भूल गए, इसलिए नाम पड़ गया हमारा बेवकूफ। तो जहां ये मन में बेवकूफी रहेगी ना, फजीती पहुंच जाएगी, आप कहीं भी जाओ पीछे पीछे खोते खोते पहुंच जाती। तो नारायण हम लोगों को क्या करना चाहिए, ना समझी को दूर करना चाहिए। और ना समझी दूर कैसे होगी, जब किसी समझदार के पास जाएंगे और जाकर कला सीखेंगे तो ना समझी दूर हो जाएगी। तो यहां पर भी आश्वलायन ऋषि परमेश्वरी ब्रह्मा जी के पास जाकर अधी अधी मतलब की मुझे पढ़ाओ, प्रार्थना किया कि हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन कराइए। ब्रह्म विद्या कैसी है, तो बड़े बड़े सदवी सज्जनों के द्वारा सेवित होने वाली है। निगुढ़ाम मतलब बहुत ही गुप्त है। यया अधिग्रही सारे पापों को दूर करके विद्वान पुरुष परात्पर पुरुष को उपलब्ध हो जाता है। ऐसी जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को हमें आप अधि ही अधि मतलब अध्ययन करवाइए। यहां पर जब प्रार्थना किए आश्वलायन ऋषि, तो योग्य ऋषि थे, जिससे आप लोग सब बड़े योग्य है ना, बहुत दिन से श्रवण कर रहे, तो बिना विधि विधान के औपचारिकता के, नहीं तो पहले औपचारिकता करते ना कि जाओ 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करो, है ना, तपस्या करो फिर आना, ऐसा कुछ नहीं कहे। सीधा ही उन्होंने कहा कि श्रद्धा भक्ति ध्यान से जानो और उपदेश शुरू कर दिया। तो आपको ये बहुत जल्दी और सीधे सीधे आपको यह उपदेश मिल जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।